फिर उसके बाद अगली चीज हम थोड़ी सी देखेंगे अब कि क्या मौत की कोई तकलीफ होती है, मौत कैसी चीज है। तो पहली बात है कि मौत की तकलीफें होती हैं, नाकाबले बयान तकलीफ है मौत की। हजरत आयशा से रिवायत है, नबी सल्लम ने मेरे सीने और ठोड़ी, यानी आप देखिए ना कि चेस्ट और ठोड़ी ये जगह, यहाँ पे आप फौत हुए, यानी जब नबी सल्लम पे नजर आती तो आप अपनी बीवी आयशा की इस जगह पे सर रखे हुए थे। कभी आप बैठ के देखें तो एक बंदा बैठा और दूसरा लेटा हो तो बिल्कुल उसकी लैप में आता है तो उसका मुंह इधर लगता है ना, ये कैफियत थी। और कहती हैं कि आपकी वफात के वक्त जितनी आपको तकलीफ थी, इसके बाद मैंने कभी किसी के बारे में मौत की तकलीफ के कम होने का तसव्वुर भी नहीं किया। ये बुखारी की रिवायत है, यानी नबी को अगर मौत की तकलीफ हो रही है तो फिर मौत की सख्तियां हैं। अल्लाह ताला के नबी ने खुद कहा कि मौत की सकरात है, सकरात है, वह नाजियाती गरका व नाशिताती नाश्ता, सूरत का आगाज है कि डूब डूब कर रूह निकालने वाले फरिश्तों की कसम, मरते ही हमारे साथ होना क्या है। हमें तो जीने की फिक्र है ना, रात को क्या होना है, वीकेंड पे दावत में जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, शायद आज रात को मौत की दावत आ जाए, तो मरते ही क्या होना है, हम सबको पता होना चाहिए, वी शुड बी रेडी अहेड ऑफ टाइम। तो इसलिए मौत की तकलीफों से दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत, कि अल्लाह मेरी मौत की सख्तियों को आसान कर दे। फिर इसी तरह मौत को कसरत से याद करना चाहिए। आज तो लफ्ज़ मौत कह के लोग कहते हैं ना 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 डिप्रेशन होता है, कोई मज़े की बातें करें, ये क्या आप मौजू लेके बैठ गई, किसको पता है आज क्या होना है, कल क्या होना है, मौत तो इतनी करीब है। तो अल्लाह ताला हम सबको सदमों से बचाए। तो मौत को कसरत से याद करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, तिरमिज़ी नीसाई और इब्ने माजा में, अल्लाह के नबी ने फरमाया लज्जतों को मिटाने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो, अक्सिरू ज़िक्र हाजिम लज्जात यानी अल मौत। कैसे मौत लज्जतों को तोड़ती है, कभी किसी को दुनिया से जाते देखें और उसके बाद उसके कमरे में जाएं, उसकी वार्डरोब, उसकी जूतियाँ, उसके कपड़े, जिंदगी में लोग हमारी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते, कोई एक नज़र भर के देखे तो हमें बुरा लगेगा। कभी आप में से किसी ने ऐसा किया कि आप घर में ही हैं और जाके अपनी भाभी की अलमारियाँ खोल के चेक करें, या आप किसी के घर में दोस्त के घर जाएं कहो चलो पीछे हटो मैं तुम्हारी अलमारियाँ देखती हूँ, आप किसी के यहाँ पड़ा हुआ पर्स खोल के देख सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, सामने या पीछे की तो बात ही अलग है। लेकिन मरते ही क्या होता है, पिछले साल मैं अमेरिका में थी अभी शुरू में, तो मस्जिद से ताल्लुक़ है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक सिस्टर थी तो उनकी मदर की जब डेथ हुई, कुछ अरसा तो लोग हमारी चीज़ें संभालते हैं, एक साल हो गया हुआ था या मे बी फ्यू मंथ्स थे उनकी मदर की डेथ को, फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन किया कि मुझे अम्मी जी की कुछ चीज़ें देनी है तो मैं मस्जिद में छोड़ जाती हूँ तो आप दे दें, बिलीव मी पूरा कमरा भर गया। उसने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी माँ की चीज़ें पैक की हुई, इवन अंडर गारमेंट्स तक पैक करके धो के ऊपर लिख के लगाए हुए कि ये कुछ है। तो जब मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मैंने देखा, मैंने कहा ये है ज़िंदगी, ये है इंसान, ज़िंदगी में हो सकता है कभी किसी ने हाथ ना लगाया इन चीज़ों को, और आज अपने बच्चे नहीं पहन रहे, मेरे दिल में आया ये खुद क्यों नहीं पहन रही, स्वेटर चादरें जूते हर चीज़, क्योंकि मेरे पास अपने ही इतने हैं, हो सकता है माँ की मोहब्बत में उन्होंने कुछ रख भी लिए होंगे। लेकिन आप याद कीजिए कि जब हम इस दुनिया से जाने को सोचेंगे ना, तो इस दुनिया को कम से कम जमा नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कपड़े वो जो पहन लीजिए, खाना वो जो खा लीजिए, इस्तेमाल की चीज़ें ज़िंदगी में बहुत होती हैं, रखिए ना, एक्स्ट्रा ना छोड़िए, घर को गोदाम ना बनाएं, ये ना कि आप एक जोड़ा पहन रही हैं तो 6 जोड़े जी ये मैंने 1 साल पहले पहना था, एक 2 साल पहले पहना था। मैं आप सबको दावत दूंगी आज जाके अपनी वार्डरोब खोले, चेक करें कौन सा जोड़ा मैंने आखिरी दफा कब पहना था, अब तो मौसम का भी कोई फर्क नहीं रहा, मैंने तो देखा है अंदर घर के अंदर हमारी अपनी मर्जी होती है मौसम बना ले, चले गर्मियों सर्दियों को अलग भी कर दें, क्या कुछ कपड़े हमने साल में बस एक ही दफा नहीं पहने होते, शादियों के जोड़े इतनी कीमती भाई बहनों की शादियों पे बनते हैं, एक आधा दफा पहन के छोड़े होते हैं, ये जुर्म है, ये जुल्म है, फिर वो आपका नहीं है, या तो खुद दोबारा पहने और आपने नहीं पहनना क्योंकि आप पहन चुके, दो मसले होते हैं कि करीबी शादी में आप पहन गए तो आप दूसरे करीबी की में क्यों पहने, क्योंकि ये फुला भाई की पहनी थी तब अगले भाई पे फिर पहनूं, तो अच्छा भी फिर दूसरे घरों में जब जाते हैं तो पहन ले, कहते इतने भारी जोड़े गैरों में जाके पहने, तो आप बताइए रखने क्या, इनको करना क्या आपने? रिसाइकल करें, किसी को दें, बेच दें, खरीद दें, डोनेट कर दें, लेकिन अपनी अलमारियों में ना रखें, अपने लिए बनाएं तो पहने, घर में पहन लें, दावतों में पहन लें, शादियों में ज़रूरी तो नहीं कि कीमती कपड़े पहने। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन लज्जतों को टूटता है। किसी को भी अगर सेल्फ कंट्रोल सीखना है ना, तो अपनी मौत को सोचे, और ख़ास तौर पे जब यकीन करें आप सफ़र करते हैं। आप कहते हैं सामान ही कुछ नहीं इस दफ़ा तो, बस ऐसे ही कहते हैं ना हम हमेशा, इस दफ़ा तो मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की, और जब वो छोटी छोटी चीज़ें जमा होती, कहते हैं 40 किलो हो गए, आया क्या, मैंने एक डाला क्या, लिया क्या, फिर उस वक्त समझ आता है कि ये क्या मुश्किल हो गई। इसी तरह ये ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हम जमा तो कर लेते हैं, तो इसको बांध बांध के नहीं रखना, बल्कि आगे भेजना। अबू ज़र गफ्फारी की बात याद आ गई कि कोई उनके घर गया तो कहा, अबू ज़र आपके घर में सामान ही कोई नहीं, सामान किधर है? कहने लगे कि वो मैंने दूसरे घर भेज दिया। वो समझे कि इनके भी को हमारी तरह एक से ज़्यादा घर होंगे। कहा अच्छा, दूसरे घर में किधर भेजती है, कहाँ भेजा है? कहा इधर क्यों नहीं है? कहा इधर का मालिक मुझे रहने ही नहीं देता इधर, तो सामान मैंने दूसरे, कहा वो किधर? कहा आगे भेज दिया। जब इस दुनिया में रहना नहीं है तो फिर यहाँ सामान क्यों जमा करूँ? अब अगला हमारा मौजू क्या है कि मरने के दौरान जैसे मरने के असरात हैं किसी पे या हम पे, तो क्या किया जाए? इसमें पहली चीज़ क्या है कि मरने वाले के करीब बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मसनून है। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। ये मुस्लिम की रिवायत है। थोड़ा सा इस मौजू को समझ लीजिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि मरने वाले को कहो कि तुम पढ़ो, ठीक है, जैसे यहाँ लफ्ज़ अगर आप देखें ना, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अरबी के अल्फाज हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, मरने वाले को ना कहो, खुद पढ़ो, तुम्हें पढ़ता देकर वो भी पढ़ेगा। वाय कि अगर तुमने उसको कहा पढ़ो, मौत की सख्ती, दर्द, तकलीफ, कराहत में वो कहते मैं नहीं पढ़ता, तो इनकार पे मौत ना है। तो बेस्ट थिंग क्या है, बच्चों वाली बात, कि जब आप बच्चों से कुछ कराना चाहें ना, खुद वो काम करें। आप कुछ करते हैं, बच्चे को भी करने दें। आप खा रहे हैं, उनको वो खुद ही खाएगा। आप चुप हैं, बच्चा भी चुप होगा। आप बुलाएंगे, बच्चा भी बोलेगा, ठीक है? तो आप वो कीजिए जो आप कराना चाहते हैं। जाहिर है कि जब किसी पे जानकनी का वक्त होता है तो उस वक्त को गाने तो नहीं सुनता, कुरान सुन लें, तिलावत लगा दें, और अगर आप खुद कलमा पढ़ें तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेगा। फिर और दूसरी बात यह है कि मौत के वक्त अल्लाह ताला से मुआफ़ी और बख्शिश की तवक्को गालिब रहनी चाहिए। ये ना कहें कि मुझे उसने कहा माफ़ करना, मैं नहीं माफ़ हो सकती, मेरे गुनाह नहीं। बल्कि इसकी रिवायत बड़ी खूबसूरत है, हज़रत जाबिर से मुस्लिम में रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 दिन पहले आपको ये फरमाते हुए सुना। अब देखिए, नबी सल्लम की अपनी डेथ से सिर्फ 3 दिन पहले तक आप लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे। क्या फरमाया? मरते वक्त इंसान को अल्लाह ताला से हुस्ने जन रखना चाहिए, यानी गुड होप्स, अच्छी बातें रखो। ये ना कहो कि मैंने कहा मरना है, क्या होगा, कैसे होगा। बल्कि एक और खूबसूरत रिवायत और भी हमारी मदद करेगी। हजरत अनस से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक करीबुल मर्ग शख्स के पास आए, जवान था और जस्ट क्लोज टू डाइंग, यानी डेथ बेड पे था। आपने उस नौजवान से पूछा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो? उसने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला से डरता भी हूँ और अल्लाह की रहमत से पुरउम्मीद भी हूँ। यानी गुनाहों को याद करके तो अल्लाह से डर लग रहा है कि अल्लाह मुझे पकड़ेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत से पुरउम्मीद हूँ। तो उस पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी के दिल में खौफ और ईमान जमा हो जाए तो अल्लाह ताला हस्बे उम्मीद फजल और करम करते हैं, और हस्बे खौफ मामून और महफूज रखते हैं। ये तिर्मिजी और इब्ने माजा की रिवायत है। खुलासा क्या है इसका? कि जब किसी को अपने गुनाहों का डर भी हो, अल्लाह की पकड़ का डर है, इन्ना बच्चा रब्बी कल अशदीद, लेकिन साथ ही साथ अपनी कुछ नेकियां और अल्लाह के साथ हुस्ने गुमान रखते हुए जन्नत की भी उम्मीद है, तो ये ईमान है। और हदीस में ईमान की तारीफ भी आती है, अल ईमानु बैन अल खौफी वर रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की बात है। आज गलत मसला क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। तो मौत तो तब ठीक होगी जब जिंदगी ठीक होगी, और वो क्या है कि आज हम बेखौफ होके गुनाह करते हैं, हम बेखौफ होते हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, फिर गुनाह करने लग जाते हैं। देखिए, जब हाय अल्लाह से बड़ा डर लगता है, फिर गुनाह कर रहे होते हैं, ये कैसा डर है। कुछ अरसा पहले हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ा कि जहाँ सरीहन अल्लाह के हुक्म टूट रहे थे ना, कोई ऐसा मौका था खुशी का। तो खैर जब हम वहाँ से आ गए तो मैंने, कोई ऐसी बात हुई घर में जो भी मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा कि इतने अच्छे लोग हैं लेकिन उनसे भी इतने गलत काम हो जाते हैं ना, तो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो जिनसे बात, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का डर नहीं हो सकता ये। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगे कि सीट बेल्ट बांधते हैं हम लोग, क्यों बांधते हैं, गवर्नमेंट का डर है ना, 70-80 पाउंड या 100 पाउंड का टिकट का खतरा है ना, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, रेड लाइट पे हम चलते नहीं हैं, तो खौफ है ना, ये असली खौफ होता है। अगर अल्लाह की नाफरमानी से रुक नहीं रहे और जुबान से ये कह रहे हैं कि हमें अल्लाह का खौफ है, तो इट्स जस्ट लाइक झूठ है। तब हम सब इस पे अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी अमली जिंदगी में अल्लाह का खौफ कितना झलकता है। अल्लाह का खौफ वो नहीं है जो बंदे को साधु और राहिब बना दे, मजनू बना दे, अल्लाह का खौफ ये जो गुनाहों से रोक ले। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपना सही खौफ दे। फिर उसके बाद अगली बात है कि अगर किसी को मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए तो ये खुशखबरी है, उसकी निजात का जरिया होगा, और हर मुसलमान को खातिमा बिल खैर की दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरा खात्मा अच्छा कर। हज़रत मास बिन जबल से रिवायत है अबू दाऊद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरते वक्त जिसकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है। चलिए इस मसले को भी समझ लें, क्योंकि मेरा तो काम यह है कि सिर्फ बात ना आए बल्कि बात की एप्लीकेशन भी आए। दो तीन बातें इस बारे में। पहली बात देखिए कि मौत के वक्त ला इलाहा अचानक नसीब नहीं होता। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जिंदगी भर मोमिन के दिल में कलमा होता है, अल्लाह का खौफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, उसकी बातें। अब जो चीज़ दिल में थी, और जाहिर है जब दिल में थी तो अमल भी कर रहा था ना, मौत के फरिश्ते को देखकर खौफ की वजह से वो दिल की बात जुबान पे आ जाती है। जैसे आप देखिए कि खुदा ना खास्ता रात को घर में चोर आ जाए, तो चोर के हाथ में गन देख के हम खुद ही नहीं बोलने लग जाएंगे, चाबियां इधर रखिए, सोना इधर है, ये ले लो, मेरी जान छोड़ दो। मैंने ऐसे लोगों की बातें सुनी है कि खुद अपने हाथ से कहती हैं मेरे बच्चे को ना कुछ कहना, ये चीजें ले लो। तो खौफ बंदे को झूठ से आरी कर देता है। अगर खौफ नहीं है ना तो कभी भी झूठ से नहीं बचेंगे। अब जब चोर को देखकर हम उसको सच बताने लगते हैं तो मलकुल मौत तो बड़ा बहुत बड़ी चीज है, तो दिल में कलमा होगा। दूसरी बात, जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी ना तो मौत ईमान की आएगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक औरत थी, हम सब औरतों के लिए रोल मॉडल है। दो दफा अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में उनके बारे में उनको कहा है कि या मरियमो, ए मरियम, तुझे मैंने चुन लिया, तुझे इस्तफाई ना की और वतहरा की, मैंने तुझे पाक किया। कब ये खुशखबरियां फरिश्ते ने आके दी, जब वो इबादत खाने में इबादत कर रही थी। बीबी मरियम को चोजन होने की खुशखबरी कब मिली, जब वो अल्लाह के रास्ते में निकली हुई थी। ये नहीं हो सकता कि बीबी मरियम किसी मॉल में बैठी हो और खिलाफे शरीयत चीजों पे नजरें भी पड़ रही हो और कानों में भी हो, और वहां फरिश्ता आके कहते मरियम आ जाओ, मैंने आपको चुन लिया। अगर आप और मैं चाहते ना कि हम भी चुने जाएं और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन खुशखबरियां दे, तो उसके लिए जिंदगी भर अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है कि क्या हकीकत में मेरे जिंदगी में ये चीजें मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि मौत के वक्त में एक और अलामत है जिससे किसी के ईमान का पता चलता है, वो क्या है, माथे पे पसीने का आना, पेशानी पर पसीना आता है ईमान की अलामत है। हजरत बुरैदा से रिवायत है इब्ने माजा निसाई और तिरमिजी में, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मौत के वक्त मोमिन की पेशानी पर पसीना आ जाता है। सोचिए जरा आप देखिए कि नॉर्मली पसीना कब आता है, आप अपने ऊपर लें। एक तो सिंपल सी बात है ना कि गर्मी में, लेकिन आपको पता है कि मौत के वक्त का जो पसीना वो किस चीज की अलामत है, और सिर्फ माथे पे, खास तौर पे इतनी जानकनी की कैफियत होती है कि इंसान पसीनों पसीना हो जाता है। फिर एक और पसीना भी आता है हम सबको हमारे मुहावरे में, रिग्रेट। जब बंदे के ऊपर हसरत होती है ना तो पसीने छूटते हैं। मौत के वक्त हर बंदे को इस बात की हसरत रहती है कि मैं कुछ और नेकियां कर लेता। सूरत मुनाफिकून पढ़ लीजिए। हत्ता इज़ा जाहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाती है उस वक़्त कहता है कि लौल आखरतनी इला अजलिन करीब, ए मौत के फरिश्ते मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं सदका करना चाहता और नेक बनना चाहता हूँ। तो मौत के वक्त हर बंदे को हसरत होती है, लेकिन मोमिन के माथे पे पसीने मोती की तरह अल्लाह सजा देता है, इस बात की दलील बनाकर कि ये ईमान वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें ये नसीब करे। फिर इसी तरह जुमे की रात या जुमे के दिन की मौत फितने कब्र से निजात का जरिया है। अल्लाह हमें जुमे ही को मौत दे। आप देखिए, जितनी हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, अपने लिए साथ साथ चुपके चुपके दुआएं करें, अपनों प्यारों के लिए करें। मौत आनी तो है, और हफ्ते के 7 दिनों में से किसी एक ही दिन आनी है ना, तो अल्लाह जुमे की मौत आ जाए। हदीस सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है और मुस्नद अहमद और तिरमिजी में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन या जुमे की रात फौत हो, अल्लाह इसे कब्र के फितने से बचा लेगा। अब थोड़ा सा इसको फिर समझिए। जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, जैसे एक हदीस में आता है ना कि जिसने फर्ज नमाजों के बैतुल कुर्सी पढ़ी, उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ उसकी मौत है। अब जब ये बातें हम पढ़ते हैं ना, तो दो तरह से इसका रिएक्शन होता है। एक तो ख्वाहिश होती है कि ऐसा हो, हम हर नमाज के बस आयतुल कुर्सी पढ़ें या जुमे की नमाज, जुमे की मौत की दुआ करें। लेकिन एक इसका नेगेटिव असर भी होता है। शुरू से ये रिवायत अपने बड़ों से सुनी थी कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, ये होता है। तो मुझे याद है लड़कपन के वो दिन, कोई भी गलत काम करना का ना, कोई बात नहीं, वो आयतुल कुर्सी तो पढ़ती हूँ नमाज के बाद, और बस मौत के बाद जन्नत। एक दौर ऐसा गुजरा कि शऊर में ये चीज़ थी कि कर लो गुनाह क्योंकि आयतुल कुर्सी तो पढ़ते और मौत के बाद तुम्हें मिलना है। बड़े हुए, कुरान पढ़ा सीखा, तो समझ आया कि जो 5 दफ़ा फर्ज नमाजों के बाद अल्लाहु ला इलाहा पढ़ ले और अल्लाह के 25 नाम और उसकी सिफात, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स पढ़े, क्या वो नाफरमानी कर सकता है? ये तो फीकी चाय वाला अल्लाह का जिक्र हम करते हैं, 1.25 लाख का कलमा पढ़ा रखा होता है और अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं। तो शऊर के साथ नेकियां करें। दूसरी बात इसमें नोट कीजिएगा कि ये खुशखबरियां किसको मिलेंगी? ऐसी जो शख्स मुवाहिद हो, अल्लाह को एक माने, सुन्नत का ताबे हो। मुशरिक जुमे को मर जाएंगे तो क्या उनको जन्नत मिल जाएगी? बिदती या नाफरमान या जिना करने वाले या हाई जैकर या फितने फसाद करने वाले या 100 बच्चों के कातिल, जो भी गलत काम करते हैं, क्या वो जुमे को मर जाएंगे तो क्या ये खुशखबरियां मिलेंगी? नेवर। ये शॉर्टकट कहीं नहीं चलता। ये उसको मिलेगा जो जिंदगी भर बचने की कोशिशें करता था, बेचारा कभी सीधा कभी उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, अल्लाह मौका बना देगा। लेकिन ट्रांसग्रेशन, रिबेलियस होना, गलत कामों का करना और सोचना कि जुम्मे को मर गए। एक आखिरी बात करूं कि अगर हम किसी को जुम्मे को अब मरता देख लें, तो फतवा दे के जाए वहां से कि भाई हो गया जन्नती, नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं और ख्वाहिश कर सकते हैं, इसके बाद फतवा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि जब कोई मरता है ना, तो हम क्या कहते हैं? मरहूम। फिर उसके साथ कुछ और लोग लगाते हैं, मकफूर। मरहूम कहते हैं अरबी जुबान में, देखे मरहूम मफ़ऊल का वजन है, यानी सब्जेक्टिव है। वो शख्स जिस पे रहम कर दिया गया, मकफूर वो शख्स जिसको बख्श दिया गया। क्या मुझे और आपको यकीन है? अल्लाह के नबियों के दौर में तो वही आती थी। अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ, सबको बता दिया गया कि ये मुनाफिक था। अबू जहल मरा, आपने बता दिया ये कुफर पे। सहाबी फौत हो रहे हैं, साद बिन माज, अल्लाह के नबी ने बताया कि साद की मौत से अल्लाह का अर्श हिल गया। ये तो जुबान नबूवत थी ना। मैं और आप कैसे कह सकते हैं कि फलां पे रहम कर दिया गया? अल्लाह क्या कहता है? मरहूम नहीं को, बल्कि ये कहो कि अल्लाहुम्मग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ीही वाफ़ुअन्हु वक़रिम नुज़ुलहू वस्से मुतकलहू। दुआ मांगे। इसलिए मरने वालों के नाम के साथ ये मरहूम और मगफूर और इसी तरह के लंबे काफी होते हैं, ये नहीं लगाने चाहिए। लोग भी कहते हैं जी रहम हो गया तो आप क्यों दुआ मांगे। एक और भी मैंने लोगों में चीज़ देखी है, वो जब कोई नेक शख्स फौत होता है ना, जैसे नाना दादा या कोई बुजुर्ग ससुर वगैरह, तो जो हमारे गुमान के मुताबिक बहुत नेक थे, तो फिर उनके लिए दुआ नहीं करते। कहते वो तो पहले ही बख्शे बख्शाए थे, वो तो नेक थे बड़े। फला तो जक्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक ना समझो, अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है। तो हमें आपको क्या काम करना है, हर मरने वाले पे, चाहे वो बैतुल्ला में जाके मरे, वो एहराम की हालत में मर जाए, शहादत में मरे, उसकी बख्शिश की दुआ करें। क्योंकि वो दुआ उसके दर्जों को वहाँ बुलंद करेगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि मौत में कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो इंसान के गुनाहों का कफारा बनती हैं, उसमें शहादत की मौत, कर्ज के अलावा बाकी तमाम गुनाहों की मगफरत का बायस बनती है। यानी अगर कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएगा ना, सब गुनाह उसके माफ हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज उसके ऊपर बाकी रहेगी, लोगों का कर्ज। हदीस सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कर्ज के अलावा शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये मुस्लिम की रिवायत है। क्या आज के दौर में कर्ज का कोई कल्चर है? कौन है जो लोन्स में नहीं है? एक था मजबूरी का कर्ज और एक है ख्वाहिश का कर्ज, आरजुओं का कर्ज। इसलिए बगैर किसी वजह के मकरूज होना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम मकरूज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, दूसरों को कहते थे तुम पढ़ दो, क्योंकि नबी किसी की नमाज जनाजा पढ़ाए ये एक ऑनर है, तो ये ऑनर मकरूज को नहीं है। यहाँ तक रिवायत में आता है जो मैयत है वो जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहती है, हैंगिंग, जब तक कि उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए। चलिए, सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए खुद से पूछते हैं, क्या मेरे ऊपर कोई कर्ज तो नहीं, किसी इंसान का, किसी बैंक का, किसी कार्ड कंपनी का, कुछ एंड कुछ। अगर कोई ऐसा है तो फर्स्ट एंड अटमोस्ट कोशिश करके पहले उससे अपनी जान छुड़ाएं। आपको घर में गोश्त पकाने का कोई हक नहीं है जब तक कि आप कर्ज ना दूर करवा लें अपना। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, मुझे अच्छी दावतें पकाने का कुछ हक नहीं है जब तक मेरे से कर्ज ना दूर हो। और अफसोस की बात यह कि जब उस कर्ज में नाफरमानी के साथ दूसरी चीजें भी शामिल हों, हम सब जानते हैं कौन सी चीज़ है कि जिसको इंटरेस्ट फ्री करके लोन को दे। कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि आपको एक चीज़ 20 साल के कर्ज पे दे दे। आप बड़ी खुशी से कहते हैं हमने ये घर 4 लाख का लिया, बस 20 साल में किस्त देनी है, ये कहते हैं ना। किस्त कितनी देनी है और डाउन पेमेंट कितनी, उस सारे को 20 से ज़रब दे के देखिए। जो आपने 4 लाख का घर लिया है ना, जब 20 साल बाद वो पेमेंट्स पूरी होंगी, वो कम से कम 6 से 6.5 लाख आप दे चुके होंगे। और ये 2.5 लाख ऊपर किधर गए? ये आपके कर्ज की किस्तें थी, इकट्ठा देते तो 4 ही था। आज खरीदा, आज इसकी पेमेंट कर दी, 4 लाख हो गया, खत्म। लेकिन हम कहते 4 है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम 6 से भी ज्यादा दे चुके होते हैं, और सिर्फ इस शौक में कि चले 20 साल में देना है, और फिर उसमें सबको मालूम है ये चीजें। तो कर्जों से अपनी जान को बचाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको कर्ज से महफूज रखे। और मौत तो कभी भी आएगी। पहले देखिए कि माँ बाप फौत होते थे तो विरसे में दौलत देके जाते थे ना, सोने चांदी देते थे। आज माँ बाप फौत होते हैं तो वो कर्जों के तोहफे देके जाते हैं। पहले खुद सारी जिंदगी माफ कराते रहते हैं, फिर दूसरों को। गलत बात है। एक सिस्टर ने एक मौके पे मेरे से कुछ ऐसा मसला पूछा, मतलब बाप की डेथ के बाद भाइयों ने पैसे, चीजें, कारोबार बाप का ले लिया, तो बहनों का क्या हिस्सा है ना। जब डिटेल्स खुली, मैंने कहा चाहिए बताएं कि आपके अबू जब फौत हुए तो था क्या और कितना था। सारी बात का जो एंड पे खुलासा था, फैक्ट्री थी, इंटरेस्ट पे थी, कर्जों पे थी, किस्तें दे रहे थे, उसकी घर था, किस्तें दे रहे थे, बिजनेस में पैसा लगा हुआ था, उसमें चल रहा था मामला। मैंने कहा ये बताइए कि इस्लाम तो क्या कहता है, मिन बादी वसीयतिन औ दैन। अगर आप यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, आयत नंबर 12-14 के आगे सूरह निसा पढ़ लीजिए, विरासत के सारे मसाइल उसमें, वसीयत के मसाइल उसके इर्द गिर्द फिरते हैं कि सबसे पहले मरने वाले के माल में से कर्ज अदा होगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी, फिर बाकी को हिस्सा दिया जाएगा। तो मैंने कहा आप तो बता रही हैं आपके वालिद इतने मकरूज थे। मैंने कहा वो अब कर्जे कौन दे रहा है? कह रही वो भाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा तो कर्जे तो ज्यादा है, पैसा तो थोड़ा है, तो आपके तो बाप ने छोड़ा ही कुछ नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आज हम मुसलमान कितने घन चक्कर बन गए। बेसिक्स ऑफ इस्लाम, आज मैं मरूं सबसे पहला कब्र में सवाल मुझसे ये होना है कि बच्चों को कितने कर्जे दे के आए हो। तो क्या ये वो वक्त नहीं कि हम तौबा करके खत्म करें? और दुख की बात है, एक सिस्टर ने कहा कि मेरे ससुराल वाले घर लेते हैं, एक घर लिया है, दूसरा लिया, अब एक और ले रहे हैं। अच्छा भाई क्यों ले रहे हैं? एक आपका भी है, आपका भी है, कहते वो कहते हैं ये घर लेके इसको किराए पे चढ़ा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अमीर हैं, इतने पैसे उनके पेड ऑफ। कहती घर एक भी पेड ऑफ नहीं है। तो मैंने कहा कि पहले ये घर बेचें और बाकियों को पे ऑफ कर दें। कहती वो कहते नहीं छोड़ो छोड़ो, देखेंगे बाद में, हमें इस पे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, वो खुद अपना घर महंगा कर रहे हैं, इकट्ठा देंगे तो 4 लाख देंगे, पहले ये घर पे ऑफ कर लें फिर दूसरा करें। यानी सिर्फ ये मैं शऊर को बेदार कर रही हूँ कि ये जुबान जदे आम मसले हैं जिस पे कोई बोलता भी नहीं आज के दौर में। घर तो घर, लोगों ने तो दीनी इदारे तक कर्जों पे लिए हुए, और जिसमें नाफरमानी है। तो याद रखे मौत की सूरत में ये सारे बात हमसे पूछे जाएगी। अल्लाह ताला सबको पाक करे, ख्वाहिशों को कम करें, जेवर बेचें, अपने कुछ करें, अल्लाह घर बनाने से मना नहीं करता। अल्लाह की नेमत है आपका अपना घर, खुला घर अल्लाह की नेमत है, लेकिन आप उसको मैनेज करके अच्छे तरीके से कर लें, फिर आप देखेंगे कि बरकत कितनी है। जिस चीज़ में इस तरह का पैसा, सूद का या कर्ज की चीज़ें आती है, उससे तो बरकत भी चली जाती है। तो बहरहाल अगली चीज़ पे चलते हैं, और वो है अचानक मौत। अचानक मौत मोमिन के लिए रहमत और गैर मोमिन के लिए अजाब है। कभी कभी हम देखते हैं ना, खड़े खड़े जान निकल जाती है, तो इसका क्या हुक्म है? हज़रत उबैदुल्ला बिन खालिद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अचानक मौत गज़बे इलाही की पकड़ है। यानी अल्लाह किसी को जब पकड़ता है ना अचानक, तो तौबा की मोहलत भी नहीं देता। ये अबू दाऊद और बहकी की रिवायत है शाबुल ईमान में, और रज़ीन ने अपनी किताब में ये कहा कि मौत का अचानक आना काफिर के लिए गज़बे इलाही की पकड़ है और मोमिन के लिए बायस रहमत है। इसको भी समझ लीजिए, बड़ा दिलचस्प ये मौजू है। आप देखिए, एक बंदा जिसका हिसाब साथ साथ सबके क्लियर है, जिसको आप कहते हैं क्या ना पाई क्लियर है, उससे तो कोई किसी वक्त भी आके हिसाब पूछेगा, वो दे देगा, ये आपने दिया, ये मैंने लिया, ये इतने का दिया, देखें आपका मेरा हिसाब क्लियर है। ये है मोमिन। मोमिन रात से पहले अपने उस दिन के गुनाहों की माफ़ी मांग के रो धो के सोता है, अल्लाह मैंने सोना ही नहीं है जब तक तू मुझे माफ़ नहीं कर देगा। तो ही इज़ एवर रेडी टू डाई, वो तो मौत के लिए हर वक्त तैयार है ना। आप में से किसी ने सुना होगा कि बाज़ लोगों ने उम्रे के वीज़े लगवाए होते हैं, फिर अचानक पता चलता है वीज़ा लग गया और शाम 5 बजे फ्लाइट है, ऐसे होता है ना। तो लोगों ने तैयारी की होती है, बैग पकड़ा, सलाम की, निकल गए। जिसने तैयारी नहीं की होती वो कहेगा इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई गो देयर, राइट? तो ये सोचें, मोमिन अल्लाह के साथ अपना मामला बहुत क्लियर रखता है, सब साफ, लेकिन काफिर पेंडिंग, मुनाफिक पेंडिंग, कर लूंगा तौबा ज़रा बाद में, कर लूंगा नेकी ज़रा बाद में, कर लूंगा बाद में। तो लिहाजा हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमें कोई ऐसा मामला अपने सर पे ना लेने वाला बनाए कि मौत के वक्त फिक्र पड़े। आप देखते हैं कि अक्सर जब हम कहीं परदेस जाएं या उम्रे पे, तो बाज़ लोग उस वक्त फिर ये उसकी मानत है, ये उसकी, ये उसकी है, और कुछ लोगों ने सब चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे होते हैं ठीक ठाक, उनको आखिरी वक्त में घबराहट नहीं, क्योंकि वो हर दिन को इसी तरह सोचते हैं जैसे हमने कभी जाना है। तो इसमें से मेरे और आपके अमल की बात क्या भला, कि डोंट डिले, पेंडिंग पे नहीं चीज़ें रखें। आज मुझे मौत है तो मैं किस किस के हिसाब किताब लिखा रही होंगी आपको, किसका देना, किसका लेना, क्या करना है। तो मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। अच्छा, मोमिन के लिए अचानक क्यों है, इसको भी समझ लें कि मोमिन की मौत अचानक रहमत क्यों है, क्योंकि उसको फिर मौत की सख्तियाँ नहीं आती। वो जो सकरातिल मौत है ना, वो नहीं होती, बस दिल में कुछ हुआ एकदम गिरा और मर गया। हालांकि मौत की तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है, कहते हैं कि एक शख्स फौत हुआ, 500 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा किया, तो किसी ने उससे पूछा कि सुनाओ कि मौत कैसी थी, तो कहता है आज भी उसका जायका मुंह में है। यानी बात का खुलासा क्या है कि मौत के 500 साल बाद भी अगर किसी को ज़िंदा करके पूछा जाए, तो वो मौत की तकलीफ़ और उसकी कड़वाहट अभी भी उसके मुंह में होगी। इतनी तकलीफ़ तो मौत होती है, अल्लाह ताला में बचाए।